नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम को सुनने के लिए आप सब तैयार हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से एस्तर नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ भी मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
यीशु के नाम में शिफा है,
शिफा है, शिफा है, शिफा है।
यही कलाम में लिखा है,
लिखा है, लिखा है, लिखा है।
यीशु के नाम में शिफा है,
शिफा है।
यही कलाम में लिखा है,
लिखा है।
यीशु से शैतान हारा है,
हारा है।
यीशु ने उसको मारा है,
मारा है।
यीशु ने खून बहाया है,
बहाया है।
यीशु ने हमको बचाया है,
बचाया है।
यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा। पढ़ के कलाम देख लो, 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 पढ़ के कलाम देख लो। डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु से डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से नहारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है,
सच्चा है,
जो भी वो कहता है होता है,
होता है।
यीशु यहोवा रफा है, यीशु खुदा का है बेटा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। आप सबका मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल की पुस्तक में से एस्तेर नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके माध्यम से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें सिखाते और समझाते हैं। आज जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज जो कुछ भी हम सुनते हैं एस्तेर की पुस्तक से अपने जीवन में उसे ग्रहण कर सकें और आपकी आशीषों को हम प्राप्त करने पाएं। हमारी प्रार्थना हर एक भाई बहनों के लिए है जो निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमार अवस्था में हैं। पिताजी, आप हर एक को छुएं और अपने शांति और आनंद प्रदान करें, ताकि हर एक आपके द्वारा आशीषों को प्राप्त कर सके। इस समय हम सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं और प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि हम देख रहे थे कि मोर्दकै के व्यवहार को देख दिन प्रतिदिन हमान के क्रोध की अग्नि भड़क रही थी। अब आगे क्या होता है, आइए देखें एस्तेर 3 अध्याय उसके 7 पद में। लिखा हुआ है, राजा शयर्स के 12वें वर्ष के निसान नामक पहले महीने में हमान ने अदार नामक 12वें महीने तक के एक एक दिन और एक एक महीने के लिए पूर अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। ध्यान दीजिए, दिन प्रतिदिन हमान की झुंझलाहट बढ़ती ही जा रही थी। वह जब जब नगर द्वार से निकलता था तब तब सब उसे दंडवत करते थे, परंतु यह छोटे कद का मोर्दकै सीधा खड़ा रहता था। हमान को यह बात चुभती थी, अतः उसने कुछ करने का निश्चय किया। हमान यह जानकर कि मोर्दकै द्वारा उसे दंडवत न करना उसका धार्मिक प्रत्यय है, उसने संपूर्ण यहूदी जाति का विनाश करने की ठानी कि उसकी समस्या का समाधान हो जाए। हमान ने जादूगरों को बुलाया और उनसे समय ज्ञात करने को कहा कि किस दिन यहूदियों के संहार का समय होगा। उन्होंने पूर अर्थात चिट्ठियां डाली। वे नहीं जानते थे कि परमेश्वर ही उनकी चिट्ठियों को खोल रहा था। यहां भी परमेश्वर की प्रभुता व्याप्त थी। चिट्ठी वर्ष के अंतिम दिन पर गिरी, जिससे हमान के षड्यंत्र के पकड़े जाने और रोके जाने का समय मिल गया। एस्तेर की पुस्तक 3 अध्याय उसके 8 और 9 पद में आगे लिखा हुआ है, तब हमान ने राजा शयर से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 की कार चांदी दूंगा। अब हमान ने शयर्स को भड़काया कि राज्य में कुछ लोग अलग ही व्यवहार करते हैं, वे अलग विधि पर चलते हैं, ऐसे लोगों का सर्वनाश किया जाना चाहिए। हमान ने राजा को आश्वस्त कर लिया कि यहूदी जाति राजा के नियमों का पालन नहीं करती है। उनका सर्वनाश करने से उनकी सारी संपत्ति राजकोष में आ जाएगी। आपको स्मरण होगा कि शयर्स युद्ध करके लौटा था, जिसमें वह हार गया और उसे बहुत महंगा पड़ा था। उसे राजकोष में धन की आवश्यकता थी। उसने सोचा कि हमान का सुझाव अच्छा है, यहूदियों की संपत्ति और राजकोष में आ गई हो तो उसकी आर्थिक क्षतिपूर्ति हो जाएगी। राजा की रुचि तो इसी में थी। अधिकांश राजनेता अधिकाधिक कोष वृद्धि में लगे रहते हैं। राजा को यह सुझाव कार्यकारी प्रतीत हुआ। उस युग के अन्य राजाओं की नाएं शेयर्स को भी किसी की भी जान की चिंता नहीं थी, अतः उसने यह भी नहीं पूछा कि ये लोग कौन है या कौन थे जिन्हें हमान मारना चाहता था। हमान को इस सत्य का बोध नहीं था कि रानी एस्तेर भी उसी जाति की थी। राजा को भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी भी यहूदी थी और वह उसी की हत्या के अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर रहा था। एस्तेर 3 अध्याय उसके 10 पद में आगे लिखा हुआ है, तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतार कर अगागी हम दाता के पुत्र हमान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। शयर्स ने अपनी अंगूठी उतार कर हमान को दे दी। उस पर राजा की मोहर थी। उसी अंगूठी का चिन्ह मोम में उतार लिया गया था या लगा दिया जाता था। यही राजा का हस्ताक्षर होता था। जिस पत्र पर वह मोहर लगी हो वह राजा का नियम बन जाता था। राजा ने अपनी अंगूठी हमान को देते हुए बड़ी लापरवाही से कहा, मैं नहीं जानता वे कौन है और मैं चिंता भी नहीं करता, परंतु यदि तू चाहता है कि उनका संहार किया जाए तो करवा दे। शयर्स को किसी की भी जान की कोई भी चिंता नहीं थी। उसने यूनान से युद्ध करने में राजकोष खाली कर दिया था और अनुमान लगाया जाता है कि उस युद्ध में लगभग 20,00,000 सैनिक मारे गए थे। उसे लेश मात्र भी ग्लानी नहीं थी कि उसकी मूर्खता के कारण कितने लोग मारे गए। एस्तेर की पुस्तक 3 अध्याय उसके 11 से 13 पद में हम आगे पढ़ते हैं, और राजा ने हमान से कहा, वह चांदी तुझे दे दी गई है और वे लोग भी ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। यों उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियां एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा शयर्स के नाम में लिखी गई और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं और उनका सत्यानाश किया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। मेरे प्रियो, यहूदियों के सर्वनाश का आदेश मादी फरीसियों का नियम बन गया। अध्यादेश हर स्थान तक पहुंचाने में बहुत समय लगा, क्योंकि आपको स्मरण होगा कि वह राज्य भारत से लेकर संपूर्ण एशिया, भूमध्य सागर का उर्वर क्षेत्र, कुछ यूरोप, एशिया माइनर और अफ्रीका तक था। एक अति विशाल साम्राज्य। उस राज्य में अनेक भाषाएं थी, कम से कम 127 मुख्य भाषाएं। यही नहीं, प्रत्येक प्रांत में आदिवासियों की भाषाएं भी थी। शेयर्स के इस आदेश का उन सब भाषाओं में अनुवाद भी किया जाना था। यह एक विशाल राजकीय परियोजना थी। शास्त्रियों को अनुवाद करके उनकी प्रतिलिपियां तैयार करना था। यह बहुत बड़ा काम था। अनुवाद तैयार हो जाने के बाद उन्हें पत्रवाहकों द्वारा, ऊंट और गधे और घोड़ों के द्वारा और पैदल यात्रियों के द्वारा विभिन्न स्थानों में भेजा भी जाना था। एक दिन निश्चित किया गया था कि जब यहूदियों का नरसंहार किया जाएगा। इस आदेश द्वारा यहूदी विरोध को पूर्ण अनुमति मिल गई थी और अनेकों को अपने मन की इच्छा पूरी करने की स्वतंत्रता भी मिल गई थी। इस निश्चित दिन यहूदियों की हत्या करना वैधानिक होगा। यह आदेश मादी फारसियों का नियम बन गया था और हमें आरंभ में ही अनेक बार बता दिया गया था कि उनका नियम बन जाने के बाद अपरिवर्तनीय होता था। आगे चलकर के हम देखेंगे कि एक और नियम बनाया गया जो इस नियम का निराकरण करता था, परंतु यह नियम अटल था। एस्तेर की पुस्तक 3 अध्याय उसके 14 और 15 पद में लिखा हुआ है, उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई कि सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। यह आज्ञा शूशनगढ़ में दी गई और हर कार्य राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए। राजा और हामान तो दाक मधु पीने बैठ गए, परंतु शूशन नगर में घबराहट फैल गई। शूशन की जनता विमूढ़ थी। यहूदी देशद्रोही नहीं थे, उन्होंने कोई अपराध भी नहीं किया था, फिर उनके सर्वनाश का ऐसा कठोर नियम क्यों? यद्यपि वे यहूदियों को पसंद नहीं करते थे और उन्हें अलग संस्कृति के परदेशी मानते थे, नागरिक उन्हें मारना नहीं चाहते थे, वे समझ नहीं पा रहे थे कि शयर्स ने ऐसी आज्ञा क्यों निकाली। उस शाम आप ऊंट सवारों को आदेश ग्रहण करते हुए देख सकते थे। राज्य इतना बड़ा था कि सैकड़ों पत्रवाहक काम में लग गए होंगे। आप उन सवारों को इस नए नियम की प्रतिलिपियों को ले जाते हुए देख सकते थे। एक दल दक्षिण की ओर, दूसरा उत्तर की ओर, तीसरा पूर्व की ओर और चौथा पश्चिम की ओर रवाना हो गए। वे पूरी रात यात्रा करके किसी छोटे नगर में पहुंचे। तब उन्होंने वहां वह आदेश चौक में चिपका दिया कि सुबह नागरिक उसे पढ़ लें, और वे आगे बढ़ गए। घोड़ों के थक जाने पर वे घोड़े बदल कर आगे बढ़ते चले गए। संपूर्ण राज्य में आदेश पहुंचा दिया गया था कि यहूदियों का संहार किया जाए। लिखा है कि वे राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए। जी हां, शूशन नगर में वास्तव में घबराहट फैल गई थी, परंतु राजा को इसकी चिंता नहीं थी। उस शाम राजा और बूढ़ा हामान शराब पीने के लिए बैठ गए। राजा को इस बात का बोध नहीं था कि उसका यह आदेश रानी को भी मरवा देगा। मेरे मित्रों, यहूदी विरोध आज भी है और यह एक भयानक काम है। विश्वासी कभी भी इसमें सहभागी न हो। यहूदी विरोध की जड़ें मिस्र के ईंट कारोबार में थी। दुष्ट फिरौन के राज में जब यहूदी एक जाति बन गए थे, तब से ही संसार की बड़ी जातियां उनके विरोध में है। अश्शूर देश की यही कहानी थी, बेबीलोन की भी यही कहानी थी। वे उन्हें बंदी बनाकर दासत्व में ले गए थे। यहाँ पर एस्तेर की पुस्तक में भी हम देखते हैं कि फारस में उनकी दशा क्या थी। रोम भी दोषी है। स्पेन की जांच पड़ताल भी मुख्यतः यहूदियों का लक्ष्य साधे हुए थी। जर्मनी में हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों का संहार किया था। यहूदी विरोध का कारण क्या है, हम इसका अवलोकन करें। इसके दो कारण है, एक प्राकृतिक कारण है और दूसरा ईश्वरीय कारण है। इसका प्राकृतिक कारण है कि वे चारुल नहीं है। कृपया मुझे गलत ना समझें। एक विश्वासी यहूदी मेरा बहुत अच्छा घनिष्ठ मित्र था। वह एक अद्भुत मनुष्य था, परंतु अभक्त यहूदी हो या अन्य जाति, वे चारुल नहीं है। मैंने ना तो अभक्त अन्य जाति से अधिक कुरूप मनुष्य या एक विश्वासी यहूदी से अधिक अद्भुत मनुष्य कभी नहीं देखे। परमेश्वर ने हमें देखा तो हम न तो चारुल थे और न ही आकर्षक, परंतु अपने दिव्य अनुग्रह में वह हमें मसीह में नई सृष्टि बनाता है। उसी अनुग्रह ने उतरकर यहूदियों को चुनी हुई जाति बनाया। मेरे मित्रों, यहूदियों का घृणा पात्र होने का एक दिव्य कारण भी है। परमेश्वर के विधान और योजना में परमेश्वर के वचन के रखवाले यहूदी ही हैं। हमारी बाइबल भी उन्हीं से आई है। परमेश्वर ने इस काम के लिए उन्हें चुना है। वे धर्मशास्त्र के प्रेषक हैं। शैतान उनसे घृणा करता है क्योंकि वे धर्मशास्त्र के अनिरक्षक हैं। और प्रभु यीशु ने उन्हीं में से या उन्हीं में देह धारण किया था। रोमियों के पत्र 9 अध्याय उसके 5 पद में पौलुस कहता है, पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह के शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। जी हाँ, इससे बचने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसी कारण यहूदियों के लिए दिव्य घृणा भी है। बाइबल में यह स्पष्ट है और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी प्रजा अपनी जाति चुना है। शैतान उनसे घृणा करता है और परिणाम स्वरूप संसार की जातियां कभी कभी उनसे कुपित होने पर बाध्य कर दी जाती है। शेयर्स का आदेश अपरिवर्तनीय नियम बन गया था। हम एक नियम देख ही चुके हैं कि उसके एक नियम द्वारा रानी वश्ती को पद से निकाल दिया गया या हटा दिया गया। उस नियम को राजा भी बदल नहीं पाया। यहूदियों के सर्वनाश का आदेश भी राजा की मुहर लग जाने से नियम बन गया था और उसे बदलने का कोई भी मार्ग नहीं था। वह मादी फारसियों का अटल नियम था। अब परमेश्वर अपनी प्रजा को कैसे बचाएगा? इसके लिए एक और आदेश पर मुहर लगाकर नियम बनाया जाएगा और इसके लिए किसी के हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। प्रसंगवश परमेश्वर इसकी तैयारी कर रहा था। इस पुस्तक का अध्ययन आरंभ करते समय हमने ईश्वरीय विधान की चर्चा की थी। हमने अन्य जाति राजमहल देखा था जहां शराब के तौर चल रहे थे और शराब पर शराब लोग पी रहे थे। कई हजार अतिथि आए हुए थे। रानी ने राजा की आज्ञा नहीं मानी थी और परिणाम स्वरूप उसे उसके पद से हटा दिया गया था। अब परमेश्वर द्वारा अपने लोगों को बचाने में इसकी क्या भूमिका है? परमेश्वर सामर्थ्य कार्य कर रहा था और वह रुकेगा नहीं। उसने सिंहासन के साथ ही एक मनुष्य को नियुक्त कर दिया था। वही यहूदियों की मुक्ति का कारण सिद्ध होगी। परमेश्वर अपने विधान के द्वारा मनुष्य की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। प्रभु यीशु के जन्म की कहानी में भी परमेश्वर का विधान देखा जा सकता है। कैसर अगस्तुस ने जनगणना की आज्ञा निकाली। वह नहीं जानता था कि वह भविष्यवाणी की पूर्ति कर रहा है। वह नहीं जानता था कि उसकी आज्ञा मानकर नासरत से एक कुमारी बेतलेहम जाएगी जहां उसके पुत्र का जन्म होगा। मेरे विचार में कैसर ने ठट्ठा करके कहा होगा, मैं बच्चों के बारे में तो नहीं, कर लगाने के बारे में अवश्य जानता हूँ। मीका की पुस्तक 5 अध्याय उसके 2 पद में यीशु के जन्म की भविष्यवाणी है कि वह बेतलेहम में जन्म लेगा। कैसर ने सही समय पर आदेश पर मुहर लगाई कि मरियम बेतलेहम जाए और प्रभु यीशु को जन्म दे। परमेश्वर कैसर के सिंहासन पर था, परमेश्वर शेयर्स के महल में भी था, परमेश्वर अपने लोगों की चौकसी करने के लिए खड़ा रहता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 3 समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अध्याय 4 पर ध्यान देंगे, जिसका विषय है ऐसे समय के लिए ही राज्य के कोने कोने में वह भयानक आदेश पहुंचाया जा रहा था कि मोर्दकै की प्रतिक्रिया को हम देखें। आइए पढ़ें एस्तेर 4 अध्याय उसके 1 और 2 पद में, जब मोर्दकै ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दकै वस्त्र फाड़ टाट पहन राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी। मेरे प्रियो, यहूदियों के सर्वनाश के आदेश को सुनकर मोर्दकै ने टाट ओढ़कर राख मली। ओह, यह कैसा प्रदर्शन था! वह जानता था कि आदेश बदला नहीं जा सकता था। मेरे विचार में उस राज्य में 1.5 करोड़ यहूदी थे। वहां एक अति भयंकर नरसंहार होता जिसकी न तो आवश्यकता थी और न ही अनिवार्यता। एक कनिष्ठ अधिकारी हमान को दंडवत नहीं करता था जिसके कारण संपूर्ण जाति का सर्वनाश करना निश्चय किया गया, और निश्चय ही यह शैतान का काम था। एस्तेर की पुस्तक 4 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है, एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। क्या आपने ध्यान दिया कि इसमें प्रार्थना की पुकार नहीं है? ये लोग वास्तव में परमेश्वर की इच्छा से बाहर थे। यशाया की भविष्यवाणी के अनुसार कुसरो की आज्ञा थी कि वे स्वदेश लौट सकते हैं, परंतु उन्होंने लौटना उचित नहीं समझा। वे परमेश्वर की इच्छा के बाहर थे, इसलिए वहां प्रार्थना की पुकार नहीं की गई थी, परंतु वे अन्य रीतियों का पालन करते हैं, उपवास, टाट ओढ़ना, राख लगाना और विलाप करना आदि। उन्हें शेयर्स के आदेश पर विश्वास था और वे यह भी जानते थे कि वह बदला नहीं जाएगा, जैसा कि इतिहास की पुस्तकों और दानियल की पुस्तक से स्पष्ट है। आपको स्मरण होगा कि शेयर्स ने अपनी अनुपम सुंदरी रानी वस्ती को अपनी उपस्थिति से वंचित कर दिया था। तब वह स्वयं इस नियम के कारण असहाय हो गया था, वह स्वयं अपना आदेश नहीं बदल पाया। अब संपूर्ण राज्य में यहूदियों का नरसंहार भी एक अपरिवर्तनीय नियम था। यह जानते हुए यहूदियों ने टाट ओढ़कर राख में विलाप किया। मेरे मित्रों, आपको स्पष्ट रूप से पाप का बोध या आपके मन में नहीं है? मेरे विचार में कलीसिया इसकी उत्तरदायी है। अविश्वासियों को ही नहीं, विश्वासियों का भी यही हाल है। एक आम विश्वासी कहता है, हाँ मैं मसीह में विश्वास करता हूँ, परंतु अपने जीवन में उसे पाप का बोध लेश मात्र नहीं है। आज कलीसिया में ही इसका बोध नहीं है। आपने अंतिम बार कब किसी उद्धार प्राप्त या उद्धार से वंचित पापी को परमेश्वर की दया के लिए रोक कर पुकारते हुए सुना था? मेरी सेवा के आरंभ में मैंने अनेकों को आंसू बहाते हुए देखा है, मैंने लोगों को परमेश्वर को पुकारते हुए सुना है, आज मुझे यह देखने को नहीं मिलता है। प्रचार सभाओं में भी सामने तो बहुत लोग आ जाते हैं, परंतु उनके मन में पाप के लिए रोना नहीं उभरता। क्यों? मेरे मित्रों, वे स्वीकार नहीं करते कि परमेश्वर गंभीर है। वे नहीं मानते कि परमेश्वर पाप का दंड देता है। वह उस पापी को भी दंड देगा जो पाप में पड़ा रहेगा और मसीह के पास नहीं आएगा। मोर्दकै आदेश की गंभीरता को समझता था। उसने अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़कर राख डाली। वह नगर के चौक में जाकर ऊंचे शब्द में रोया। संपूर्ण राष्ट्र के यहूदियों ने विलाप किया, उपवास किया और सब रोए। वे सब उस आदेश की गंभीरता को समझ रहे थे और इसके लिए रो रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि अब उनका समय निकट है। परंतु वे इस बात के लिए पश्चाताप नहीं कर रहे थे कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध पाप किया है। मेरे मित्रों, आज हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है कि हम संकट को देख करके रोते हैं, परंतु फिर भी अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते हैं। आज हमारे लिए भी क्या ही दुख की बात है। क्यों ना आज हम इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन को जांच करके देखें और कहें कि आज मैं कहां पर हूं। परमेश्वर की निकटता में आए, अपने पापों को उसके सामने मान लें और कहें, प्रभु आप मुझे क्षमा करें, मैं इस प्रकार का गंदगीपूर्ण जीवन जीना नहीं चाहता हूं, मैं आपके सम्मुख आना चाहता हूं, मैं पवित्रता का जीवन जीना चाहता हूं, आप मुझे बचा लीजिए, इस पाप में जीवन से मुझे छुटकारा दीजिए। और निश्चय जानिए कि जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में आने देते हैं, आप उसके सम्मुख अपने पापों को मान लेते हैं, तो वह आपको क्षमा करता है, वह आपके पापों को धो डालता है और आपके जीवन में शांति और आनंद प्रदान करता है। मेरे मित्रों, आज आप निर्णय लें। यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज आप एक सही निर्णय लेंगे और अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करेंगे। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे।
जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे।
आओ दर्शन भिक्षा दे दो,
आओ दर्शन भिक्षा दे दो।
आया हूँ शरण तिहारे,
आया हूँ शरण तिहारे।
जाऊँ कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे।